प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
कार्यक्रम परिक्रमा में अभिवादन स्वीकार कीजिए सर फिरोजी का। अगले आधे घंटे में हम आपको देंगे देश दुनिया की जानकारी, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ खास है। खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी हमारी रहेगी नजर और उन खास हस्तियों को हम करेंगे याद जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या हमसे विदा हुए। परिक्रमा के इस अंक में मेरे साथ हैं शेफाली।
Hello, Sir Firozi, and good afternoon, dear listeners. You are tuned to Parikrama on 100.1 FM. And for you, we have a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, tributes, and much more. All these over the next 30 minutes. So we begin with the news headlines first. Indian Medical Association writes letter to Prime Minister Narendra Modi seeking law for safety of healthcare professionals.
सीबीआई की आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य से दुष्कर्म और हत्या मामले में पूछताछ जारी। कोलकाता पुलिस ने अस्पताल के आसपास गैरकानूनी रूप से लोगों को एकत्रित होने से रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू की।
यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट्स टू 188 एक्सपैट्रिएट्स अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इन अहमदाबाद।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर व्यापार, निवेश, ऊर्जा और सुरक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए कुवैत पहुंचे।
एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन टू अराइव इन इजराइल टुडे एज पार्ट ऑफ वॉशिंगटन्स डिप्लोमैटिक पुश टू अचीव सीज फायर इन गजा। And now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we'll talk about Chennai Book Festival. In a world where screens seem to dominate, a refreshing idea is unfolding in Srinagar. Today we are delving into a heartening trend that's bringing a touch of magic back to the world of reading. In an era where digital screens have become almost omnipresent, book festivals are proving to be a beacon of hope for those who cherish the written word. Let's explore how these vibrant events are helping to rekindle our love for books and why reading has become such a precious luxury in today's fast-paced world. So, Sir Firozi, hum batate apne listeners ko that Chinar Book Festival, which began at Sher-e-Kashmir International Convention Center, is a week-long celebration dedicated to reigniting our love for the written word, with a diverse lineup of authors, interactive sessions and literary activities. This festival is set to inspire a new generation of readers. So grab a cup of coffee, settle in and join us as we dive into the world of books and imagination right here at the Chinar Book Festival. The Chennai Book Festival, which began last evening, is set to last till 25 August 2024 through the collaborative efforts of the National Book Trust India and the District Administration Srinagar.
कहा जाता है कि अगर आप बिना हिले दुनिया घूमना चाहते हैं तो बस किताबें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत उत्सुक हैं या अपनी जिंदगी को तलाशना चाहते हैं तो किताबों में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ये बताता है कि आपकी और हमारी जिंदगी में किताबें कितनी अहम हैं, इसलिए दुनिया भर में और देश के कई हिस्सों में बुक फेयर आयोजित किए जाते हैं जहां से किताबें लेकर आप अपनी सारी जिज्ञासाओं को दूर कर सकते हैं। इसी तरह का एक बुक फेस्टिवल कश्मीर घाटी में भी आयोजित किया गया है जिसका नाम है चिनार बुक फेस्टिवल। खूबसूरत डल झील के किनारे आयोजित होने वाले 9 दिनों के इस बुक फेस्टिवल में 200 से ज्यादा स्टॉल होंगे जहां अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी समेत कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में किताबें उपलब्ध होंगी। इस बुक फेयर के जरिए पाठक देश भर के 1000 से अधिक प्रकाशकों की पुस्तकों तक अपनी पहुंच बना सकेंगे। इस बुक फेयर में नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज भी शामिल होगी।
डेप्यूटी कमिश्नर श्रीनगर डॉ बिलाल मुहियुद्दीन भट्ट हैज सेड दैट देयर हैज नॉट बीन एनी फेस्टिवल ऑफ सच अ लार्ज स्केल इन श्रीनगर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू इमर्स देमसेल्व्स इन अ वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड कल्चर। In a time when our daily lives are often consumed by screens and instant notifications, book festivals provide a rare and cherished escape. They remind us of the tactile joy of turning pages and the thrill of discovering new worlds beyond the digital realm. Here, in the midst of literary stalls and author talks, the act of reading becomes a tangible, almost celebratory experience. और सरफिरोजी मतलब बुक्स का मैजिक ही कुछ ऐसा होता है जो हमें अपनी ओर खींच लाता है. जैसे कि इसमें भी हमने बात की कैसे ये एक टैक्टाइल एक्सपीरियंस है. स्क्रीन पे हम कितना स्क्रॉल करेंगे पर जब तक वो किताब हमारे हाथ में नहीं होती, उससे वो सौंधी सी खुशबू नहीं आ रही होती, पन्ने पीले पड़ रहे हो फिर भी उन्हें पलटने का मजा आता है, तब तक वो एक्सपीरियंस इट्स अनमैचेबल.
बिल्कुल. और कई बार आपके मन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब आपको फोन पर नहीं मिल सकता, तो ऐसे में हम कहीं पुरानी बड़ी किताबों को उठाकर पढ़ते हैं और उनसे हमें वो सवालों के जवाब मिल जाते हैं.
और कहते हैं कि मूवी देखते हैं तो हम एक दुनिया, अलग सी दुनिया में चले जाते हैं, बट किताबों में से भी हम वी कैन ट्रैवल थ्रू बुक्स एक जगह बैठे बैठे.
जी. और जैसा आपने कहा कि आजकल लोग अपनी सारी जो क्यूरियोसिटी है वो फोन के जरिए ही सुलझा लेते हैं, और आजकल लोगों में हमारा टाइम स्पेंड इतना कम हो गया है कि किताबें पढ़ने का हम इतना सब्र ही नहीं बचा कि हम किताबें पढ़ें, तो ऐसे में इस तरह के जो फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं वो और भी जरूरी हो जाते हैं.
बिल्कुल.
नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के निदेशक युवराज मलिक ने महोत्सव के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये जो बुक फेस्टिवल है ये घाटी के लोगों के लिए ही आयोजित किया है, जहां हर रीडर के लिए कोई न कोई किताब मिल ही जाएगी जो उनको पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगेगी. पर शेफाली, जैसा कि आपने बताया, इस फेस्टिवल में सिर्फ किताबें नहीं मिलेंगी बल्कि इसके अलावा कई और एक्टिविटीज भी होंगी. इनमें चिनार टॉक्स भी शामिल है. इसके अलावा कैलीग्राफी वर्कशॉप, स्टोरी टेलिंग, कैरिकेचर, डाइंग कंपटीशन, आर्ट वर्कशॉप, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन, वैदिक मैथ्स प्ले, पपेट क्राफ्ट, क्रिएटिव राइटिंग जैसी चीजें भी होंगी. और इसके अलावा जो नए राइटर्स हैं, एस्पायरिंग राइटर्स हैं, उनके लिए भी काफी कुछ रहेगा. उन्हें अपनी किताबों को लॉन्च करने का इस बुक फेस्टिवल में मौका मिलने वाला है. और इसके अलावा इस बुक फेयर में एक ऐसा भी काउंटर होगा जहां ये बताया जाएगा कि जो नए राइटर्स हैं, जो अभी लेखक बनने की राह में हैं, वो अपनी किताबें किस तरह छपवा सकते हैं.
जी. Through this initiative, the District Administration Srinagar and the Ministry of Education, Government of India, aims to uphold and promote the tradition of book reading. It encourages the youth to embrace the path of knowledge and traditional wisdom, and also seeks to promote the rich literary heritage of Jammu and Kashmir at the global level. So as we navigate our screen-dominated lives, let's take a moment to appreciate these festivals as more than just events.
अगर आप भी इस वक्त श्रीनगर में हैं या अगले कुछ दिनों में वहां घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो चिनार बुक फेस्टिवल में जरूर जाएं और कुछ शानदार किताबों को पढ़ते हुए घाटी के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाएं. और अब वक्त है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास हमारे लिए आज क्या जानकारी है.
जी सर फिरोजी, लेट्स हेड टू असम फर्स्ट. असम चीफ मिनिस्टर डॉ हिमंत बिस्वा सरमा ऑन ऑगस्ट 15th अनाउंस्ड वन न्यू नेशनल पार्क फॉर द स्टेट, डिलाइटिंग कंजर्वेशनिस्ट्स एंड कम्युनिटीज अलाइक. चिकनाझर जुहुलो नेशनल पार्क इज द 8th नेशनल पार्क ऑफ असम एंड थर्ड इन द बोडो टेरिटोरियल रीजन. मूव फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट.
In his Independence Day address in Guwahati, Chief Minister Himanta Biswa Sarma renamed the Rifu Sirang Elephant Reserve Forest at Chiknazar Jauhaulau and designated it as National Park. This 391 square kilometer new park falls in the Kokrajhar and Sirang districts of BTR region. It is the home to saltrees, elephant, peacock, rare golden monkeys, tiger, leopard, wild buffalo, deer, forest poultry, otter, snakes and over 300 species of butterflies apart from 12 globally threatened species. Situated in the foothills of Bhutan Himalaya, this forest is of tropical semi-evergreen type with largely flat terrain. There is also a large wetland called Mach Bhandar inside this national park. This new national park also serves as a corridor linking Manas National Park, Boksa Tiger Reserve of West Bengal and Phibso Wildlife Sanctuary of Bhutan. Aminul Hazuddar, Akashbani News, Guwahati.
And now let's head to Goa. And Sarfarozi, you'd be surprised to know that there's more to Goa than just beaches.
Bilkul.
It is not just the serene landscape of Goa that is exhilarating, but also its unique textiles that deserve special recognition. The Kunbi sari is a major aspect of Goan Kunbi crafts that add beauty to Goa's essence.
Kunbi sari is hand-woven checkered sari which are worn by the Kunbi women in the state of Goa and some coastal part of Maharashtra. Kunbi women are majorly engaged in agriculture. With the time and recognition from the designers, the sari grew in the popularity and is now regarded as the prime Goan textile.
Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, in October 2022, announced that as a means to preserve and promote this Kunbi fabric, awards at state functions will only be facilitated with a Kunbi shawl. He had said that gifts to visiting dignitaries will either be the sari itself or cloth involving elements of the fabric. In this gesture, on August 22nd last year, the President of India, Draupadi Murmu, received a warm welcome in Goa with gifts of a shawl and a sari made of Kunbi fabric. Government is also trying hard to get GI tag for Kunbi sari.
The Goa government has established 6 handloom training centers for the rural youth. So far, more than 450 women have been trained in the art of a Kunbi handloom since the centers opened in 2016. However, the challenges of scaling up the productions, including the hard labor required for the handloom work, the scarcity of authentic raw material, and low pay discourage many from pursuing it as a full-time job. The government of Goa is also taking measures to promote the sari, considering these challenges. Tushar Jadhav for Parikrama, Panaji, Goa.
शिफाली, कल एक बहुत ही खास दिन है जिसकी तैयारियां हमने पूरी कर ली हैं इस फेस्टिवल की.
बिल्कुल, जैसा कि सब जानते हैं, कल मंडे 19 अगस्त को हम मना रहे हैं रक्षाबंधन, और इसकी तैयारियां हमने बहुत ही जोरों शोरों से कर ली हैं. एंड वी कांट वेट फॉर इट.
बिल्कुल, हमारे देश में ऐसी प्रथा रही है कि बहनें अपने भाइयों को तो राखी बांधती ही हैं, लेकिन जो भाई घर से दूर देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं, सशस्त्र बलों के सिपाहियों को भी राखियां बहनें भेजती हैं. और महाराष्ट्र के पालघर जिले की महिलाओं ने बांस का उपयोग कर इको फ्रेंडली राखियां बनाकर देश के सिपाहियों के लिए अपना स्नेह भेजा है. इस अनोखे प्रयास के बारे में और जानकारी दे रही हैं हमारी मुंबई संवाददाता.
महाराष्ट्र के पालघर जिले के विक्रमगढ़ तालुके के टेटवाली, वाकी, जांभा, विरशेत, नड़गेपाड़ा, वाणीपाड़ा और गरदवाड़ी गांवों की महिला और पुरुषों ने बचत गट के माध्यम से बांस की 35,000 राखियां तैयार की है. इस बारे में बांस उद्योग उत्पादन निजी मर्यादित कंपनी के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी दिलीप घाटाल ने बताया कि इस काम का प्रशिक्षण यहाँ की महिलाओं को देकर उन्हें रोजगार देने की ये एक पहल है.
यहाँ पे बहुत सारा बांबू है, तो यहाँ के लिए गौरव श्रीवास्तव जो है मुंबई के युवा, उन्होंने इस गांव में पूरा स्टडी किया, 25 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया. और केशव सृष्टि ने सोचा ये 25 महिलाओं को सीमित न होते हुए ये पूरा विक्रमगढ़ तहसील हम करेंगे, तो और कुछ गांव एडिशनल किया और उस गांव को ट्रेनिंग दिया. लगभग अभी 700 महिलाएं इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए हैं और कंपनी भी बनी हुई जो विक्रमगढ़ बांबू उद्योग नाम से जानी जाती है. इस साल हमने जो राखी 35,000 बनाया है, 4 प्रकार की राखी बनाई है, उसमें सुमन है, वक्रतुंड है, कलश है और अयोध्या है. इससे महिलाओं को अच्छी आमदनी मिलेगी. इसमें से 15,000 राखी सैनिकों को की है. ये तो हमने आसाम रेजिमेंट वहां भेजी है, फिर वेस्ट बंगाल में भेजी है, मराठा रेजिमेंट है वहां भेजी है. ये कुल मिलाकर 3,500 राखी हमने वहां भेजी है. और भी जैसा जैसा एड्रेस आते हैं हम उनको भेज देते हैं. ये हमारे लिए गर्व की बात है. हमारे महिलाओं ने जो बनाई हुई राखी है, ये राखी सैनिक के लिए गई.
बांस उद्योग उत्पादक कंपनी की संचालक नमिता भुरकुड ने बताया कि सिर्फ ये राखी ही नहीं बल्कि इसकी पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ सफेद कागज भी इको फ्रेंडली है.
हमने 7 गांव मिलकर ये राखी बनाई है, उसमें 130 महिलाएं और 20 जेंट्स लोग हैं. हमने जो राखी बनाई है उसमें जो कागज है पैकिंग का, वो हम कहीं भी फेंक देंगे तो उसमें तुलसी का रोप उगेगा और वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है.
इस अनूठे प्रयास से पालघर वासियों ने एक तरफ देश की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों के प्रति प्रेम जताया है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण सुरक्षा का संदेश भी देने का प्रयास किया है. परिक्रमा के लिए मुंबई से अंकिता आप्टे.
And Sarfarozi, we'd like to tell our listeners that drug addiction is emerging as a serious concern in the country, especially in the younger generation, leading to dangerous consequences, not just for the person using drugs, but for the family and society at large. According to the data released by the World Health Organization, WHO, about 39 million people worldwide were suffering from HIV in 2022-23. Most cases were related to drug addiction. It is said that injecting drugs with contaminated injecting equipment is a major risk factor for HIV infection. From this point of view, the Ministry of Social Justice and Empowerment has called for drug demand reduction in the country. The central ministry has also launched Nasha Mukt Bharat Abhiyan for awareness generation among the communities and the public as well, and also opening drug de-addiction and rehabilitation centers in the vulnerable areas so as to tackle the menace. Here is a report from our Agartala correspondent.
The prevalence of drug abuse and HIV/AIDS is currently turning into an epidemic form globally. Many states, including a few from the Northeast region, are also showing alarming number of cases. On these, the union and the state governments have adopted multi-pronged strategies, including strict vigil against drug traffickers, widespread awareness drive, and also opening drug rehabilitation centers in the vulnerable districts. On this line, Tripura government has embarked on multiple strategies to curb the menace. The state government held a meeting yesterday to review the progress of activities in the fight against drug abuse and HIV/AIDS related issues. Chairing the review meeting, Chief Minister Professor Dr. Manik Shah laid stress upon identifying the sources of HIV infection. He also advocated for extensive public awareness. He asserted other points so as to win the battle against deadly HIV/AIDS. On the occasion, Chief Minister Dr. Shah said another drug center fitted with modern facilities will be set up at Vishramganj in Sipaijala district soon. Meanwhile, on the occasion of Independence Day celebration, the Governor Indrasena Reddy Nallu urged all citizens to take pledge in the fight against drug abuse and child marriage on the line of the fighting zeal of the freedom fighters.
अभी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेस ड्रग्स इसका प्रॉब्लम है, उसको प्रोटेक्ट करते हुए अगले पीढ़ी के लिए अपन काम करने का है। ये एक प्रतिज्ञा लेते हुए अगले पीढ़ी के लिए अपन कर्तव्य करना है, कर्तव्य लेके आगे चलना है।
Officials said the drugs smuggled from Myanmar are coming to Tripura through Mizoram and Assam and going to Bangladesh through covert routes. And the BSF and state police have intensified their vigil to stamp out the drug trade. Currently, besides the security forces, various NGOs are also working to make Tripura a drug-free state. For Parikrama, Subhashish Chandra from Agartala.
And now, dear listeners, it's time for us to take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On this day in 1945, it was reported that the plane in which Netaji was travelling had crashed near Taihoku Airport in Taiwan, and he reportedly succumbed to injuries in a nearby Japanese military hospital. Let's unravel the momentous life of one of the bravest personalities of Indian freedom struggle.
Subhash Chandra Bose, endearingly called Netaji, was born on 23rd January 1897 in Cuttack. He graduated from the Calcutta University in 1919 and cleared Indian Civil Services exam in 1921. That a tiger cannot be caged for too long, the free-spirited Bose resigned from civil services upon being encouraged by Chittaranjan Das to work for his country's freedom than to be a slave of the British. Bose supported Swaraj and was also of the opinion that freedom is not given, it is taken. So he devised a strategy to free the motherland from the clutches of the foreigners. And there was no looking back.
At the start of the Second World War in 1939, he initiated a mass movement under which he started uniting people from all over the country. Since there was a massive response to his call, Bose was immediately arrested by the British. While under house arrest, he planned his dramatic escape. Bose grew a beard and left his house dressed as a Pathan so that the British could not identify him. On the night of January 19, 1941, Bose first went to Bihar and then via Peshawar, Kabul, Moscow and Rome, finally reached Germany, where he met Hitler. He set up a Free India Center in Berlin and started the Azad Hind Radio.
This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration.
In 1943, Bose left for Southeast Asia to continue the fight for freedom. He revived the Indian National Army. Netaji named the regiments of INA after Gandhi, Nehru, Maulana Azad. There was also an all-women regiment named after Rani of Jhansi, Lakshmi Bai. Under Netaji's leadership, INA drew prisoners of war and thousands of civil volunteers. Bose wished to free India with the help of Japanese forces by fighting together against the British Empire. When British forces captured the Malay Peninsula, Bose chose not to surrender and planned to continue the fight from Manchuria with the aim to get support from Soviet Union. While going to Manchuria, his plane crashed.
There is a controversy regarding the death of Bose. The Japanese aircraft in which Netaji was travelling on 18th August 1945 crashed and Bose reportedly suffered severe burns. According to some reports, he died in a nearby Japanese hospital. It is believed that his body was cremated and his ashes were interred in the Renkoji Temple in Tokyo. Though there is a dispute if the ashes interred in the temple are indeed his. This has given rise to many theories that Bose may have survived the crash. Bose was described as patriot of patriots by Gandhiji. His voice continues to instill patriotism.
I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.
18th August is also the birth anniversary of Vijay Lakshmi Pandit. She was a politician and diplomat who holds the distinctions of being the first Indian woman to hold a cabinet post in pre-independent India and also the first woman president of the United Nations General Assembly.
अब चलते हैं खेल के मैदान में और लेते हैं वहां की जानकारी.
Badminton Association of India has sent a team of 39 players to the Asia Under 15 and Under 17 Junior Championships in Chengdu, China, commencing Tuesday. The team aims to win multiple medals and build a strong foundation for the 2025 World Junior Championship, which will be hosted by India. The Indian team departed for Chengdu yesterday after a preparatory camp in Guwahati. The squad will be led by Gnana Dattu and Tanvi Reddy Andaluri in the under-17 category and Shyam Bindiganavile and Tanvi Patri in the under-15 category. Shaina Manimuthu will compete in both the girls' under-17 singles and doubles with Aikya Shetty.
और अब बात टेनिस की, जहां आज अमेरिका में विश्व के नंबर एक महिला और पुरुष खिलाड़ी इगा स्वियातेक और जाननिक सिनर सिनसिनाटी ओपन टूर्नामेंट 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे. स्वियातेक और अरियाना साबालेंका के बीच पहला सेमीफाइनल भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. इटली के सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर जुरेव से होगा. अब वक्त है उन हस्तियों को याद करने का जो आज ही के दिन इस दुनिया में आए या हमसे विदा हुए. शुरुआत कर रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो कुछ इस तरह कहते हैं.
सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं. आंखों से मानूस थे सारे चेहरे, सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए, और तन्नूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार, कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक और नाटककार गुलजार की, जिन्होंने अपने शब्दों के जादू से कई बार आपकी और हमारी जिंदगी के खालीपन को भरा।
And Gulzar is at heart a poet. His films, sensitive, lyrical and yet successful, were a welcome relief from the violent films that filled the 1970s and 80s. Some of the films he has written include Guddi, Bavarchi, Do Dunichar, Khamoshi and Safar. Gulzar also tried his hand at television with the much acclaimed television film Mirza Ghalib. So, aaiye sunte hain inki film ka ye gana, Aapki Aankhon Mein Kuch.
आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। लब हिले तो मोगरे के फूल खिलते हैं कहीं।
Also, dear listeners, today is the death anniversary of Thattil Anthony Johnson, popularly known as Johnson or Master Johnson, an Indian film score composer and music director who has given music to some of the most important motion pictures of Malayalam cinema, including those for Kude Vide, Namukku Parkan Muntiri, Thoppukkal, Ponthan Mada and Bhuta Kannadi. So we are listening to the music from Maya Mayuram by Johnson.
आज श्री नारायण चतुर्वेदी की पुण्यतिथि है। ये हिंदी के साहित्यकार और पत्रकार थे। ये सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अपनी अमूल्य हिंदी सेवा द्वारा इन्होंने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय और पुरुषोत्तम दास टंडन की योजनाओं और लक्ष्यों को आगे बढ़ाया।
And now, dear listeners, today is the birth anniversary of Patrick Wayne Swayze, an American actor, dancer and singer-songwriter known for playing distinctive lead roles, particularly romantic, tough and comedic characters. So he co-wrote and recorded the popular song She's Like the Wind, and let's listen to that track.
She's like the wind to my trees. She rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, she doesn't know what she's done. Feel the breath.
Dear listeners, today is also the birth anniversary of R.S. Subbalakshmi, a social reformer and educationist in India. She made efforts to abolish child marriage and to encourage education of girls. She was a part of the historic All India Women's Conference on Educational Reform. She actively supported the Child Marriage Restraint Act as well.
आज विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी की जयंती है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी की सभाओं सहित विभिन्न मंचों पर रामधुन गाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया। इनके शिष्यों में पंडित विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण राव जैसे कई दिग्गज गायक शामिल थे। हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनकी शिष्यों का गाया ये राग।
घूमके चलत राम चंद, घूमके चलत बाजत पैंदनिया, घूमके चलत राम चंद, घूमके चलत राम चंद।
Also, dear listeners, on 21 July 1973, the Post and Telegraph Department, Government of India, paid homage to Paluskar by releasing a commemorative stamp.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और शिफाली को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।